समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों की हम बात करेंगे जिनकी आज है पुण्यतिथि या है जन्मदिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा 100.1 एफएम। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश कुमार। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज़, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीस ओवर द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज़ हेडलाइंस फर्स्ट।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एशिया को सुदृढ़ करने और वास्तविक शांति स्थापित करने के लिए बौद्ध धर्म की भूमिका पर चर्चा करने की आवश्यकता व्यक्त की।
एक्सटर्नल अफेयर्स मिस्टर डॉ एस जयशंकर सेज कनाडा हैज पैटर्न ऑफ मेकिंग एलिगेशंस विदाउट प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक्स, कॉल्स पुटिंग इंडियन डिप्लोमैट्स अंडर सर्वेलेंस एज अनएक्सेप्टेबल।
सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा अधिनियम 2004 की विस्तृत संवैधानिक वैधता बरकरार रखी।
Leaders of all political parties intensified the election campaign for Jharkhand assembly polls.
नहाए खाए की परंपरा के साथ छठ पूजा की आज से शुरुआत।
Polling in the US to elect a new president to begin in a few hours. And in tennis, India's Ritwik Chaudhary Bolipalli and his Portuguese partner Francisco Cabral advanced to the men's doubles quarterfinals of Moselle Open in France. And now, Mukesh, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about World Tsunami Awareness Day.
बिल्कुल, सुनामी जो है बहुत ही भयंकर त्रासदी लेकर आती है। जब कभी भी कहीं समुद्र तटीय इलाकों में भूकंप आता है तो उसके बाद सुनामी की विभीषिका हमें देखने को मिलती है और उससे बहुत बड़े पैमाने पर हानि होती है।
Absolutely, and today is the World Tsunami Awareness Day. It is observed globally every year to increase awareness about the dangers of tsunamis and encourage proactive preparedness in the event of such natural disasters. Established by the United Nations General Assembly in 2015, the day underscores the importance of early warning systems and community education to reduce the catastrophic effects of tsunamis. The word tsunami comprises the Japanese word tsu, meaning harbor, and nami, meaning wave. A tsunami is a series of enormous waves created by an underwater disturbance, usually associated with earthquakes occurring below or near the ocean. Volcanic eruptions, submarine landslides, and coastal rockfalls can also generate a tsunami, as can a large asteroid impacting the ocean. And you know, Mukesh, they originate from a vertical movement on the sea floor with a consequent displacement of water mass. And tsunami waves often look like walls of water and can attack the shoreline and be dangerous for hours, with waves coming every 5 to 60 minutes. And the first wave may not be the largest, and often it is the second, third, fourth or even later waves that are the biggest.
बिल्कुल, दिसंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सुनामी के खतरों के बारे में दुनिया भर में समझ और कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में नामित किया था। इस तारीख को इसकी ऐतिहासिक प्रासंगिकता के लिए चुना गया था, जो जापानी कहानी इनामुरा नोहाए या चावल के ढेर को जलाने से प्रेरित थी। 1854 में जापान के तट पर एक शक्तिशाली भूकंप के बाद एक ग्रामीण ने आने वाली सुनामी के संकेत दिए थे। ग्रामीणों को सचेत करने और उन्हें ऊंचे स्थानों पर जाने के लिए आग्रह करने के लिए उसने अपने मूल्यवान चावल के ढेर में आग लगा दी थी। इस बलिदान और त्वरित सोच ने अनगिनत लोगों की जान बचाई, जिससे इनामुरा नोही प्राकृतिक खतरों के सामने तैयारियों और सामुदायिक सतर्कता के महत्व का एक स्थायी प्रतीक बन गया। तब से जापान आपदा तैयारियों और सुनामी पूर्व चेतावनी प्रणालियों की प्रगति में वैश्विक रूप से अग्रणी रहा है।
In 2004, the Indian Ocean tsunami became one of the deadliest disasters in history, claiming the lives of more than 2,28,000 people across 14 countries. And this event marked the first major global disaster of the 21st century and remains one of the deadliest in recent history. In the aftermath of this tragedy emerged a commitment to global cooperation for local resilience, and this resulted in the creation of a tsunami early warning system that benefits 27 countries around the Indian Ocean basin.
इस वर्ष के विश्व सुनामी जागरूकता दिवस का विषय है युवा और भावी पीढ़ियां। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बात पर बल दिया है कि सुनामी की तैयारियों में युवाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य बच्चों और युवाओं की नई पीढ़ी को इसके पाठ पढ़ाकर हिंद महासागर सुनामी की 20वीं वर्षगांठ मनाना है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण संगठन सुनामी से संबंधित आपदाओं से जीवन बचाने के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है। ये नियमित रूप से सुनामी के जोखिम वाले देशों से निकासी मार्गों को अपडेट करने, नई चेतावनी प्रणाली स्थापित करने और बच्चों और युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने का आग्रह करता है। वे युवाओं और शिक्षण संस्थानों को आपदाओं के दौरान जान बचाने के तरीके को समझने के लिए स्टॉप डिजास्टर्स ऑनलाइन गेम खेलने और सीखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। विश्व स्तर पर निचले तटीय क्षेत्रों और छोटे द्वीपीय विकास देशों में 700 मिलियन से अधिक लोग समुद्र तट के संपर्क में हैं।
World Tsunami Awareness Day serves as a vital reminder of the critical need for tsunami awareness, especially for vulnerable coastal areas. It emphasizes that early warning and preparedness can significantly reduce the loss of life and property during such disasters. And the day also highlights the importance of preparedness on both local and global scales, promoting best practices, early detection, effective evacuation plans, and robust community preparedness. Additionally, it encourages global cooperation with countries sharing knowledge, resources and advancements in technology to mitigate tsunami risk and strengthen resilience worldwide. And the World Tsunami Awareness Day serves not only as a memorial to previous tragedies, but also as a proactive initiative to equip communities with the knowledge and tools needed to respond effectively to future tsunami threats.
और श्रोताओं, अब समय हुआ है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलने का और जानने का कि उनके पास क्या विशेष है। तो सबसे पहले अभिषेक, महाराष्ट्र के पुणे चलें।
Yes, and Pune is set to play an important role in the planning in accordance with the biotechnology policy recently announced by the central government. Under it, a bioengineering research center will be set up in Baner area of the city. We have more from a Pune correspondent.
The Department of Biotechnology is trying to develop a completely new culture in the biotechnology sector by using the collective capacities of the research institutes, universities and the industries. Pune will be an important center in this regard, as it is having major institutes like National Center for Cellular Science, ICER, and National Chemical Laboratory. The Pune Bio Cluster was started in these institutes by developing latest infrastructure facilities. Now these facilities will be used to produce various products through research. A new campus of NCCS is being developed in Baner. The proposed biotechnology research center will be set up in this campus. It will mainly cater to research and training related to bioengineering. The biotechnology policy envisages precise measures to develop bioproduction in the country, considering the changing technology in the 21st century, increasing population, and the challenges of climate change. The information technology has witnessed basic research through the revolution. It gave rise to a new economy as the facilities of computer and internet reached in the hands of each individual through smartphones. Similarly, the world is going to witness revolution in biotechnology within the next 2 decades. The Bio E3 policy aims to make India a major player in this progress and provide its benefits to the entire nation. The new center coming up in Pune will provide a platform for the researchers to adopt a completely new work style to bring about the changes from laboratories up to the industries. For Parikrama, Manoj Kshirsagar, Pune.
और पुणे से अब चलते हैं उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के अमरोहा के गजरौला में मौजूद है एक अनूठा रेडियो संग्रहालय। इसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात के नाम पर रखा गया है। हाल ही में इस मन की बात रेडियो संग्रहालय को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो प्रस्तुत है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
अमरोहा के गजरौला में मौजूद मन की बात रेडियो संग्रहालय अपने आप में दुनिया का एक अनूठा संग्रहालय है। इस संग्रहालय में अलग अलग मॉडल के 1257 यूनिक रेडियो सेट संरक्षित हैं, जबकि कुल रेडियो सेट की तादाद 1400 से भी ज्यादा है। संग्रहालय में सबसे छोटा 3 इंच का और सबसे बड़ा 1.5 मीटर का रेडियो मौजूद है। इसमें साल 1920 से लेकर हाल ही में बने रेडियो मॉडल भी शामिल है। इन रेडियो मॉडल को इकट्ठा करने के लिए इस संग्रहालय के मालिक राम सिंह बौद्ध ने बहुत मेहनत की और ये रेडियो सेट घूम घूम कर देश भर से इकट्ठा किए गए। राम सिंह बौद्ध को वैसे तो एंटीक रेडियो और दूसरे सामान को इकट्ठा करने का शौक सालों से था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर उन्होंने रेडियो सेट का ये संग्रहालय बना डाला। पूरे देश में चर्चित इस संग्रहालय को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इस उपलब्धि के बाद संग्रहालय स्वामी राम सिंह बौद्ध और उनके परिवार में खुशी का माहौल है।
मेरे इस रेडियो संग्रह का मन की बात रेडियो कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किया गया, तब से मुझे काफी प्रसिद्धि मिली है और आज और उसी के बाद से ही मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपना आवेदन किया और अब मुझे जो है 1257 रेडियो का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है, जो कि मुझे बहुत बड़ी ही खुशी है और ये भारतवर्ष में एक नया वो हुआ है, क्योंकि अभी तक भारतवर्ष में कोई रेडियो संग्रहालय नहीं था और इसे जो है रेडियो संग्रहालय की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो गई है, जो कि मेरे लिए और देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि।
अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस संग्रहालय का जिक्र अपने मन की बात कार्यक्रम की 107वीं कड़ी में कर चुके हैं। राम सिंह बौद्ध का कहना है अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने के लिए रेडियो एक बेहद सशक्त माध्यम है। उनका कहना है कि आने वाली पीढ़ियां इस संग्रहालय से रेडियो के अनूठे इतिहास से परिचित हो सकती हैं। अमरोहा से मरगूब हुसैन की रिपोर्ट के साथ परिक्रमा के लिए सुशील चंद्र तिवारी।
एडवांसमेंट्स इन साइंस आर मेकिंग लाइफ बेटर एंड मोर कंफर्टेबल एवरी डे। इमेजिन बीइंग टोल्ड दैट सून डॉक्टर्स कुड यूज आर्टिफिशियल स्किन इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ड्रेसिंग्स टू ट्रीट योर वुंड्स। Wouldn't that amaze you? This exciting breakthrough has now been achieved right here at Nagpur University. We have a report.
Researchers at Rashtrasant Tukroji Maharaj Nagpur University's Department of Molecular Biology have developed an artificial skin with antimicrobial properties that can be applied directly to wounds without the need for traditional dressings. This breakthrough was led by Dr. Dayanand Gogle, Head of Department of Molecular Biology, and Dr. Aarti Shanvare, Head of Department of Biotechnology at the Lakshmi Narayan Institute of Technology, with Dr. Bipin Lade serving as project head. For years, standard wound care has involved applying ointment followed by a bandage. This new artificial skin, however, allows wound to be treated and protected without additional dressing. The skin is designed to cover and heal wounds by creating an environment that aids in drying and natural recovery. The formulation contains medicinal ingredients that promotes healing while also reducing the time needed for skin regeneration in the affected area. Importantly, the artificial skin is biodegradable, meaning it will naturally decompose after use, eliminating concerns about medical waste. The development represents a major advancement in wound care, combining antimicrobial effectiveness, environment sustainability, and faster healing. This is Himangi Kulkarni with Dhananjay Vankhede for Parikrama from Akashvani Nagpur.
Aur Abhishek, छठ पूजा की जो धूम है पूरे देश में मची हुई है, सब जगह तैयारियां चल रही हैं और इसका व्रत रखने के लिए लोग उमड़ के आगे आ रहे हैं, तो बिहार में भी 4 दिन तक चलने वाली छठ पूजा आज नहाए खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गई है। सूर्य देव की पूजा का ये पर्व 8 नवम्बर को सवेरे उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ सम्पन्न होगा। तो सुनते ही रिपोर्ट।
नहाए खाए के साथ लोक आस्था के महापर्व छठ की आज शुरुआत हो गई। पूजा के पहले दिन गंगा, कोसी, गंडक, बागमती, घाघरा और सोन नदी सहित राज्य की अन्य नदियों के छठ घाटों पर पवित्र स्नान और पूजा के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कल खरना का अनुष्ठान होगा, इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाएगा। राज्य के औरंगाबाद, नालंदा और पटना जिले में स्थित प्रसिद्ध देव ओंगारी धाम तथा ओलार सूर्य मंदिर परिसर में भी छठ पूजा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना।
मिटाई और अब चलते हैं आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में राज्य सरकार ने दीपम 2 योजना शुरू की है, तो क्या है इसके बारे में जानकारी?
Yes, in Andhra Pradesh, the state government has introduced Deepam 2.0 scheme under which free gas cylinders will be provided to women. The ultimate aim is to provide clean cooking energy and improve living conditions. Let's hear more from a correspondent.
Andhra Pradesh Chief Minister Nara Chandrababu Naidu launched Deepam 2.0 scheme in Srikakulam on Friday. This initiative offers free gas cylinders to women, aiming to provide clean cooking energy and improve living conditions. Deepam scheme is government initiative in Andhra Pradesh. It focuses on providing women with access to liquefied petroleum gas, LPG, for cooking. The scheme aims to eliminate the use of traditional cooking methods that can be harmful to health and environment. Deepam 1.0 was the initial phase of the initiative. It provided women with LPG connections and subsidies. Deepam 2.0 builds on this by offering 3 free gas cylinders annually. The primary goal of Deepam 2.0 is to empower women by providing free gas cylinders. The scheme reduces financial burdens. It also promotes cleaner cooking methods, improving health and safety in households. According to officials, around 2,684 crore rupees will be spent annually on Deepam 2.0 scheme. Chandrababu Naidu has already handed over 894 crore rupees to petroleum companies as the first installment. Under the scheme, 3 gas cylinders per year will be given to beneficiaries at intervals of 4 months. Chief Minister said that all those who have white ration cards are eligible for Deepam 2.0 scheme. People enrolled under the scheme will have to pay for the gas cylinders that will be reimbursed within 48 hours. The first cylinder can be booked before March 31, 2025, and bookings have been started from October 29, 2024. Arrangements have been made to provide gas cylinder in 24 hours in towns and 48 hours in rural areas. As per sources, there are 1 crore 40 lakh eligible beneficiaries of this scheme. Deepam 2.0 scheme reflects a growing commitment to women empowerment in Andhra Pradesh. It aims to create sustainable changes in cooking practices while supporting women financial independence. The government focus on clean energy is expected to continue evolving in future initiatives. And this is Satyanarayana for Parikrama from Vishakhapatnam.
और आंध्र प्रदेश से अब चलते हैं लद्दाख, और लद्दाख में आज शुरुआत हुई है पोलो कप की, तो क्या जानकारी है अभिषेक?
यस, इन लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा टुडे इनॉग्रेटेड द 4th एलजी हॉर्स पोलो कप 2024 इन गोशान ड्रास। ड्यूरिंग द इवेंट ही आल्सो अनवेल्ड लद्दाख फर्स्ट पोलो स्टेडियम व्हिच वाज कंस्ट्रक्टेड एट अ कॉस्ट ऑफ 6.84 crore rupees। वी हैव अ रिपोर्ट।
In the background of the beautiful snow-capped mountains of Tololing and Lhamuchan, the inauguration was attended by Chief Executive Councillor Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Dr. Muhammad Jafar Akhon, MP Ladakh Muhammad Hanifa Jan, Councillors, DC Kargil, Joint Director, Youth Surgeon Sports Duty Ladakh, and other officers, highlighting the regional importance of this historic development. Lieutenant Governor Mishra congratulated the people of Dras on the opening of the stadium and extended his best wishes to all participating teams, particularly the 2 women's teams making their debut in the LG Polo Cup, a first in event's history. He assured the community that next year's tournament will be even grander, with plans to invite the president or the vice president to witness the event, taking the event at national level. Speaking to media, Dr. Mishra also announced that a formal calendar for the LG Polo Cup will be established to attract more tourists and boost Ladakh's cultural heritage tourism. On other back development fronts, he addressed the progress of the site training center at Kurbathang, affirming his commitment to fast-track its construction, stating there is no such word as impossible in his dictionary. Additionally, he pledged financial support for Ladakhi athletes needing assistance for training outside Ladakh, emphasizing that training is the key to success. This event underscores Ladakh's dedication to preserving its polo heritage and enhancing sports infrastructure for local talent and tourism alike. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil Union Territory of Ladakh.
और अभिषेक, आप बताएं कि व्यापार जगत में क्या हलचल मच रही हुई।
द डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस एज्ड हायर टुडे लेड बाय गेन्स इन मेटल एंड बैंक स्टॉक्स। बोथ द इंडिसेस रिकवर्ड फ्रॉम लॉसेस सिक्योर्ड इन द इंट्राडे ट्रेड एमिड अनसर्टेनिटी सराउंडिंग द यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड यूएस फेड इंटरेस्ट रेट डिसीजन। द 30 शेयर बीएसई सेंसेक्स एडवांस 694 पॉइंट्स और 0.88% टू 79,477, व्हाइल द एनएसई निफ्टी 50 एडेड 218 points or 0.91% to 24,213. In the global crude market, Brent crude was trading 0.65%, up at $75.57 per barrel, and WTI crude gained 0.66% to trade at $71.94 per barrel when reports last came in. And now moving on, all the exciting news from the world of sports with Mukesh.
जी हां, मोसे ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और उनके जोड़ीदार पुर्तगाल की फ्रांसिस्को कैब्राल पुरुष डबल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। क्वार्टर फाइनल में फ्रांसिस्को और ऋत्विक की जोड़ी का मुकाबला बृहस्पतिवार को मेक्सिको के सेंटियागो गोंजालेज और फ्रांस की एडवर्डो रोजर वेस्लिन की शीर्ष वरीयता प्राप्त जोड़ी से होगा।
Yes, and now we have reached that section in the program wherein we remember all those greats who are associated with today's date, and we start off with Bhupen Hazarika.
बिल्कुल, और आज भारत के ऐसे विलक्षण कलाकार जो अपने गीत खुद लिखते थे, संगीतबद्ध करते थे और गाते भी थे, भूपेन हजारिका की आज पुण्यतिथि है। भूपेन हजारिका को दक्षिण एशिया के श्रेष्ठतम सांस्कृतिक दूतों में से एक माना जाता है। उन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता, गायन, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में काम किया। भूपेन हजारिका पहले शख्सियत थे जिन्होंने असमिया संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया था। डॉक्टर भूपेन हजारिका बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। असम रत्न हजारिका जी असम अथवा भारत के ही नहीं पूरे संसार के लिए एक विश्व रत्न थे। वे संगीत रचनाकार, सुरकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक, वाद्य यंत्र वादक, अभिनेता, सिनेमा निर्देशक तो थे ही, साथ ही वे अच्छे कवि, गद्यकार, निबंधकार, नाटककार आदि भी थे। वे समन्वयवादी थे और कल्याणकारी थे और शांति दूत भी थे। वे मानवतावादी थे, मानव के कल्याण के लिए स्वप्न दृष्टा भी थे।
Yes, and Bhupen Hazarika's songs were written and sung mainly in the Assamese language by himself, are marked by humanity and universal brotherhood, and have been translated and sung in many languages, most notably in Bengali and Hindi. He is also acknowledged to have introduced the culture and folk music of Assam and Northeast India to Hindi cinema at the national level.
আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে ভলগার রূপ দেখেছি অটো।
और अपने श्रोताओं को बताते हैं कि भूपेन हजारिका ने बचपन में ही पहला ऐसे गीत लिखा था और 10 वर्ष की आयु में उसे गाया भी था। असमिया भाषा की फिल्मों से भी उनका नाता बचपन से जुड़ गया था। उन्होंने असमिया भाषा में निर्मित दूसरी फिल्म इंद्रमालती के लिए 1939 में 12 वर्ष की आयु में काम किया था।
Yes, and he received the National Film Award for Best Music Direction in 1975, the Sangeet Natak Academy Award 1987, Padma Shri 1977, Padma Bhushan 2001, Dada Saab Phalke Award 1992, the highest award for cinema in India, and Sangeet Natak Academy Fellowship 2008, the highest award of the Sangeet Natak Academy, and he was posthumously awarded both the Padma Vibhushan, India's second highest civilian award in 2012, and the Bharat Ratna, India's highest civilian award in 2019. Hazarika also held the position of the chairman of the Sangeet Natak Academy from December 1998 to December 2003. Let's listen in to one more song of his.
Dil hum hum kare ghabraye ghan dham dham kare
and John Robert Fowles passed away on this day in 2005. He was an English novelist critically positioned between modernism and postmodernism. His work was influenced by Jean-Paul Sartre and Albert Camus, among others. After leaving Oxford University, Fowles taught English at the school on the Greek island, a surgeon that inspired The Magus 1965, an instant bestseller that was directly in tune with the 1960s hippie anarchism and experimental philosophy. This was followed by The French Lieutenant's Woman, a Victorian-era romance with a post-modern twist. that was set in Lyme Regis Dorset, where Fowles lived for much of his life. Later fictional works include The Ebony Tower, Daniel Martin, Mantisa and a Maggot. Fowles' books have been translated into many languages and several have been adapted as films.
और अब हम याद कर रहे हैं भारतीय सिनेमा जगत में बीआर चोपड़ा के नाम से प्रसिद्ध बलदेव राज चोपड़ा को। उन्हें एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता रहेगा जिन्होंने पारिवारिक, सामाजिक और साफ सुथरी फिल्में बनाकर लगभग 5 दशक तक सिने प्रेमियों के दिलों पर अपनी खास पहचान बनाई। नया दौर, वक्त, हमराज, बाबुल और बागवान जैसी जीवन में रची बसी कहानियों को दर्शाती बीआर चोपड़ा की फिल्में आज भी सिने प्रेमियों के दिल और दिमाग पर अमिट छाप छोड़ती हैं। तो क्यों ना अभिषेक सुन लिया जाए पहला उनका ये गाना की फिल्म का।
जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी।
और उन्होंने विधवा, पुनर्विवाह और वेश्यावृत्ति जैसी सामाजिक समस्या को अपनी फिल्मों में अपना विषय बनाया और उनकी ज्यादातर फिल्में किसी न किसी सामाजिक मुद्दे पर आधारित रहती थीं। तो क्यों ना उनकी फिल्म वक्त का ये गाना सुना जाए।
ऐ मेरी जोहरज भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी जोहरज भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हसी।
और अभिषेक बता दें कि फिल्म जगत में दिए गए उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें फिल्मों के सबसे बड़े सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया था। क्यों ना उनकी फिल्म हमराज का भी ये गाना सुना जाए।
एब्सोल्युटली।
नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले।
और 1949 में फिल्म करवट से उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन दुर्भाग्य से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर असफल रही थी। लेकिन 1951 में अशोक कुमार अभिनीत फिल्म अफसाना को बीआर चोपड़ा ने निर्देशित किया और ये चली भी थी। क्यों ना उनकी फिल्म का एक और ये गाना सुना जाए।
Yes, and Brian Gay Adams was Guy Adams was born on this day in 1959. He's a Canadian singer, songwriter, musician, record producer, and photographer. He's estimated to have sold between 75 million and more than 100 million records and singles worldwide, placing him on the list of the best-selling music artists. In 1991, Adams released Everything I Do It For You, which went to number one in at least 19 countries, including for 16 straight weeks in the UK. Let's listen to it.
Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your...
ध्रुपद और ख्याल गायन जैसी शैली के श्रेष्ठतम गायक रहे फयाज खां की आज पुण्यतिथि है। पिछली शताब्दी के पूर्वार्ध के जिन संगीतज्ञों की गणना शिखर पुरुष में की जाती है उनमें फयाज खां का नाम भी शामिल है।
Yes, and Arthur Ira Garfunkel was born on this day in 1941. He's an American singer, actor, and poet who's best known for his partnership with Paul Simon in the folk rock duo Simon and Garfunkel. Let's listen in to the band's hit track, Bridge Over Troubled Water.
Feeling small when tears are in.
और महान स्वतंत्रता सेनानी जिनका जीवन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में युगांतरकारी था, सी आर दास यानी चितरंजन दास की आज जयंती है। चितरंजन दास को प्यार से देशबंधु कहा जाता था। ये महान राष्ट्रवादी और प्रसिद्ध विधि शास्त्री थे। चितरंजन दास अलीपुर षड्यंत्र कांड के अभियुक्त अरविंद घोष के बचाव के लिए बचाव पक्ष के वकील थे। असहयोग आंदोलन के अवसर पर इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी थी और 1921 में अहमदाबाद में हुए कांग्रेस अधिवेशन के वे अध्यक्ष बने थे। तो श्रोताओं, इसी के साथ आज का परिक्रमा कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त हो जा रहा है, तो मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को आज का परिक्रमा कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। नमस्कार।